फिर इसी तरह आप देखिए कि जब कोई जुल्म करता है तो उसको जुल्म के जवाब में उससे बदला कर ले लें, तो हदीस में आता है कि वो मन जुलिमा आ गया, यानी फिर उसको उस तकलीफ पे अजर तो नहीं है लेकिन गुनाह नहीं है। हदीस सुन लीजिए क्योंकि बातें हदीस से ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। हदीस में आता है कि अल मुस्तबानी मा काला फअलल बादी मालम यातदिल मजलूम, आपस में गाली गलौज करने वाले दो शख्स जो कुछ कहें इसका गुनाह पहल करने वाले पर है। यानी जिसने गाली देने की पहल की अब दूसरे ने भी दी, तो जिसने पहले गाली दी उसके जवाब में दूसरे में दी, बराबर की दे दी है तो गुनाह नहीं है, ठीक है, लेकिन बदला लेने के साथ आगे माफी की बात तो आ ही रही है। सूरत शुरा 40 में आता है व जजाउ सैयतिन सैयतु मिस्लुहा, बुराई का बदला तो उसी के बराबर बुराई है। हाँ लेकिन फमन अफा व असलह फाजरुहु अलल्लाह, पस जो दरगुजर करे इसलाह करे इसका अजर अल्लाह के जिम्मे है। और माफी कितनी प्यारी है, सही मुस्लिम में आता है कि जो माफ कर देता है अल्लाह ताला उसकी इज्जत में इजाफा करता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि मन जुलम के अंदर एक और चीज है, कैसे बोले, किसी आलिम से मसला पूछना, चंद बातें रुख्सत की वो नोट कर लीजिए कि किसके सामने किसका तस्करा कर सकते हैं। नंबर एक, मसला पूछने के लिए, अब जाहिर है कि एक इंसान है दूसरे के बारे में पूछता है तो बदला लेगा ना उससे, तो फिर वो गुनाह नहीं है, लेकिन शर्त वही है कि ज्यादती ना करे, ऐसे ना कि क्या बताऊं और क्या और दिस एंड दैट, ठीक है। फिर इसी तरह आप देखिए कि दूसरी चीज क्या है कि कोई चोरी करता है आपकी, हदीस में आता है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की कोई चीज चोर चोरी कर गया तो आप उन पर बददुआ करने लगी, तो अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्यों इसका बोझ हल्का कर रही हो, यानी अगर तुम बद्दुआ दोगी तो जो चोरी से तुम्हें फायदा हुआ है और उसको नुकसान हुआ है उसका फायदा हो जाएगा बद्दुआओं से और तेरा फायदा कम होगा। हजरत हसन बसरी कहते हैं कि बद्दुआ नहीं करनी चाहिए बल्कि ये दुआ मांग ले, अल्लाहुम्मा आइन्नी अलैहि वस्तखरिज हक्की मिन्हु, या अल्लाह इस चोर पर तू मेरी मदद कर और इससे मेरा हक दिलवा दे। फिर इसी तरह गाली देने वाले को गाली दे सकता है बंदा बराबर की लेकिन बोहतान नहीं लगा सकता जो कि उस पर बोहतान बांधे, हदें हैं ना। फिर इसी तरह एक और चीज़ इसमें छोटी सी नोट कर लीजिए, मुस्तद अहमद की रिवायत में है कि ज़ियाफ़त की रात हर मुसलमान पर वाजिब है, यानी एक रात वाजिब है, ठीक है। अगर कोई मुसाफिर सुबह तक महरूम रह जाए तो ये इस मेज़बान के ज़िम्मे कर्ज़ है, ख्वाह अदा करे ख्वाह बाकी रखे। इसी तरह रिवायत में आता है कि किसी के मेहमान बनो तो 3 दिन के लिए, पहले 3 दिन तक मेहमानी की जाए उसके बाद फिर उसको घर के अंदर खाने में शामिल कर लिया जाए। अब ये नहीं कि कोई मेहमान बन के गया और एक महीने का मेहमान है और कहे कि रोज़ मुझे मुर्मू सल्लम मिले, ये सब कुछ ये दुरुस्त नहीं है। सिर्फ 3 दिन की मेहमानी, और मेहमानी में से जो पहला खाना होता है ना उसको अरबी में नुज़ुल कहते हैं, कुरान में भी आता है नुज़ुल मिन गफूर रहीम, ये सूरत खामीम सजदिया में गाले बनाता है, यानी अल्लाह ताला पहला खाना जो है वो अपनी मर्जी से लाएगा। फिर आप देखिए कि मेहमान नवाजी का मतलब सिर्फ अच्छा खिलाना पिलाना नहीं है, खंदा पेशानी से मिलना, खुश आमदेद कहना, अच्छी जगह बिठाना, खुद खाने में शरीक होना और उसके आराम का ख्याल रखना। अब मेहमानी के नाम पे दूसरों की कीमतें भी नहीं करनी चाहिए, बाद हम कहते हैं हम कंपनी दे रहे हैं मेहमान को और सारे खानदान के गुना माफ़ हो रहे होते हैं, और उसका सुना, और ख़ासतौर पर भाभीियों के बेचारियों के सारे गुनाह उसी वक्त माफ़ हो जाते हैं। फिर इसी तरह आप देखिए कि एक और चीज़ है और वो क्या है कि मेहमान चाहे अजनबी हो या रिश्तेदार, गैर मुल्क से हो या पड़ोस से हो, सबके साथ उनकी इज्जत करो, उनजिले ना सम नाजिला हो। एक मौके पे एक कबीले का सरदार आया था नबी सल्लम के पास कैदी बनकर, लेकिन आपने सहाबा को से कहा कि इसको इसके मर्तबे के मुताबिक डील करो। लोगों को डील कैसे करो, आलिम को जाहिल की निस्बत ज़्यादा लेकिन तौहीन जाहिल की भी नहीं करनी, यानी मेहमानों के भी दर्जे होते हैं, कोई बराबर का है कोई उससे ऊपर का है कोई नीचे का है। आप देखिए कि जब हम किसी चीज़ का भी ख्याल रखेंगे तो दूसरी तरफ से हमें जवाब मिले ना मिले अल्लाह ताला की तरफ से बदला ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। फिर इसी तरह एक आलिम थे तो उन्होंने किसी से रिश्ते का इनकार सिर्फ इसलिए कर दिया कि जब वो रिश्ता देखने गए तो उन लड़के वालों ने खातिर ख्वाह खातिर नहीं की, तो उन्होंने सोचा कि मेरी बेटी ने इनके घर में आना है, तो जिनका इतना भी मिजाज अच्छा नहीं कि किसी आए हुए मेहमान की अच्छी खातिर करे, तो ये उसको घर में लाने के बाद यानी कंजूसी की तरफ इशारा है, तो उन्होंने इस वो रिश्ते को ना करने की वजह ये बता दी थी। फिर इसी तरह आप देखिए कि कहते हैं कि इल्ला मन जुलिम से मुराद वो शख्स है जो शिरकिया और बुरा कलमा निकालने पर मजबूर कर दिया गया हो, यानी किसी को मजबूर करके किसी की बुराई करवा ली जाए जबरदस्ती के तौर पे, तो वो इसके अंदर आ जाता है। और आप देखिए कि अगर कोई आपकी बात ना सुने तो वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह सुनता भी है और जानता है। हर बंदा आपका दुख नहीं समझ सकता, आप हर एक को सुना भी नहीं सकते, उसको सुना दीजिए जो सारों की सुन के उसके बदले भी दे सकता है। वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, करो क्या आयत 149, इन तुब्दू खैरन, अगर तुम किसी नेकी को ऐलानिया करो, शो ऑफ करो, पीछे बात है बुराइयों को दबाओ, बैड बिहेवियर का चर्चा ना करो, आप कहा जा रहा है कि किसी की अच्छी बात है तो उसको जाहिर करो, औ तुखफूहू या फिर उसको छुपा दो, औ तअफू या किसी बुराई करने वाले से दरगुजर ही कर लो, अनसुइन फइन्नल्लाह कान अफुवन कदीरा, बस यकीनन अल्लाह ताला पूरी माफी करने वाला और कुदरत रखने वाला है। रग़बत दिला दी कि देखो बदले ले सकते हो, जुबान तुम्हारे पास भी है, बात तुम भी कर सकते हो, लेकिन अल्लाह को जो चीज बंदे से पसंद है वो क्या है कि माफ कर दो। माफी पे बहुत दर्द है, दिल खुले रखें। अच्छा माफ कौन करेगा? जिसका दिल बड़ा होगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि इंसानों के मामले में हमारे दिल बड़े हो जाएं। कभी भी मजलूम की आह नहीं लेनी चाहिए, रिवायात में आता है कि मजलूम की आह अर्श तक पहुंच जाती है। कभी ऐसा किसी के साथ मामला ना करें कि जुबान उसकी ना बोले लेकिन दिल उसका आपके खिलाफ बोले, और जब इस तरह से लोग बोल पड़ते हैं तो आपको पता है कि क्या होता है। एक बड़ी खूबसूरत रिवायत है कि अर्श को उठाने वाले फरिश्ते, हामिलीन अर्श कहते हैं, ये फरिश्तों में एक बड़े आला दर्जे के फरिश्ते हुए हैं, वो अल्लाह सुबहाना ताला की तस्बीह बयान करते हैं, हर वक्त अल्लाह ताला की तस्बीहात करते हैं। उनमें से बाज कहते हैं सुबहानका अला हिल्मिका बादा इल्मिका, ये तो आप भी याद करें और मैं भी कर लूं, सुबहानका पाक है तू अला हिल्मिका बादा इल्मिका, कि अल्लाह तेरे इतने इल्म के बावजूद तेरा इतना हलीम होना, हम इस पे तेरी तारीफ करते हैं। और याद रखिए जो इल्म आपके अंदर हिल नहीं लाता वो इल्म बोझ है। आगे आएगी बात इल्म के बोझ वालों की, वहां आपको मिसाल दूंगी। नरमी पैदा करें, अपने अंदर ऐसी लाएं कि लोगों को माफ करें, अल्लाह तू भी तो मुझे माफ करता है। लैलतुल कदर की रातों की दुआ अल्लाह के नबी ने जो हजरत आयशा को सिखाई वो क्या थी, कि बेटा मांग ले औलाद मांग ले, नहीं, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ्वा फ़ाफ़ु अन्नी। बस दफा जो चीज हम अल्लाह से मांग रहे होते हैं ना, हम लोगों को वही नहीं दे रहे होते, हम नहीं उसको माफ करेंगे, मैं उसको नहीं माफ करूंगी, मरते दम तक मैं तो उसकी ये चीज नहीं माफ करूंगी, बर्दाश्त नहीं करूंगी। कब्र में पहुंच चुकी होती हैं बुजुर्ग सासें और दादियां नानियां, लेकिन लोग कहते हैं कि हम उसको माफ नहीं करेंगे। अब यहां आप देखिए कि लफ्ज क्या आए हैं कि इन तुबदू, जो तुम जाहिर करोगे और अल्लाह ताला को उसका पता चल जाता है। अब इसमें आप देखिए खैर का जो लफ्ज है, खैर की अरबी जुबान में बहुत मुख्तलिफ एप्लीकेशंस होती हैं, मसलन इसको दो बड़ी खैर में कर ली, यानी खैर की पहले दो बुनियादी किस्में हैं, सिदकु माल हक की, हक के साथ सच्चाई इख्तियार करना, और दूसरा खुलकु माल खल की, मखलूक के साथ अख्लाक पेश करना। पहली क्या है, अल्लाह के मामले में सच्चा होना, मुश्किल लग रहा है तो आसान कर देती हूँ, और दूसरी क्या है, मखलूक के साथ अच्छा होना। बात वाज़े, खैर दो तरह की है, एक अल्लाह के मामले में और अल्लाह के हक में सच्चा होना, इसको तो यहीं छोड़ दें, अगली पे चलें क्योंकि टॉपिक वो है, खैर के मखलूक के साथ बंदों के साथ। इसकी फिर दो किस्में हैं, नंबर एक ईसालु नफा इलैहिम, इनको नफा देना, और दूसरी दफ़ु दरारु अनहुम, उनसे जरर को रोक लेना, यानी किसी को नफा दे सकते हो तो दे दो, नहीं दे सकते कम अज कम उसको नुकसान से जरूर बचा लो। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इन तुबदू खैरन, खैर फैलाओ, अपनी जात को एक बादल बना लो बरसता जाए लोगों के ऊपर, और तुम उसको खैर देते रहो, अच्छी अच्छी बातों को आम करो, खैर को आम करो, अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करो, ताकि खैर की बातें जब लोगों के सामने चली जाए। बाकी आखिरी बात जिसके ऊपर अब मौजू पलट रहा है, क्योंकि अगला टॉपिक बिल्कुल इससे डिफरेंट है, अभी जैसे बात हो रही है तो बहुत निजी इंसानी मामलात की हो रही है, आगे अकीदे की बात आने लगी है, तो आखिरी बात क्या है कि आपके साथ ज्यादती हो ये नेकी का सबसे ऊंचा दर्जा है कि आप उसको माफ कर दें। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो कहते हैं कि मैं ये पसंद करता हूं कि क्यामत के दिन मैं मजलूम बन के आऊं, ना कि जालिम बन कर आऊं। तो मजलूम बनना बहरहाल बेहतर होता है जालिम बनने से। अगली जो आयात आ रही है इसके ऊपर थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा। वहदते अदियान, यूनि रिलीजन का नजरिया जो आज के मॉडर्न दौर की पैदावार है, लेकिन इसकी जड़ें माजी से चलती हैं। लोग क्या चाहते हैं? सारे अदियान, सारे रिलीजन्स को मिलाकर एक रिलीजन बना दो। हिंदू, सिख, मुस्लिम, महाजर, सब भाई भाई, बस वो भगवान कहे तुम रब कहो, वो ये करो। अब जब लोग सारे मजाहब को एक करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज है अल्लाह। मानते अल्लाह है ना, अल्लाह, रहमान, भगवान, ईश्वर, प्रकाश, जो भी कह ले, किसी न किसी रंग से अल्लाह का वजूद तो है हर मजहब में। आपको कहते हैं कि बुत परस्त मजाहब भी ऊपर वाले को मानते हैं, समझते हैं ना? सिर्फ एथियस नहीं मानते होंगे, उनको निकाल दें। दुनिया का हर मजहब जो है वो अल्लाह को तो मानता है। आप चाहते हैं कि चले हम सारे मजाहब को जमा करते हैं, सबने कहा ठीक है, मानते ऊपर कोई है, मान लिया मान लिया मान लिया, हो गई खत्म, सब बात हो गई। एथिक्स, अच्छे अखलाकियात को क्या दुनिया का हर मजहब मानता है? सब मानते हैं। सच बोलना चाहिए, कोई मानता है? झूठ नहीं बोलना चाहिए, मानते हैं। चोरी, शराब, बदकारी, बुरी चीजें सबको बुरी लगती है, उस पर भी इत्तेहाद हो जाता है। अब ये भी लिख ले, आप एक पलड़े में डालें, इस पर भी एक्टिविटी बन सकती है। ऊपर मुख्तलिफ मजाहब के अकायद को आप बाल्टियों में शो कर दें, आप सब में से चीजें निकाल रहे हैं, नीचे एक बड़ी सी बाल्टी रख लें, उसमें आपने डालनी है चीजें। अब अल्लाह की जात भी डल गई उसके अंदर आके, बीच में एथिक्स भी सारे डल गए। वो चीज जो उस बाल्टी में नहीं डलती ना हर एक कैसे, वो रसूल की जात है। अब इस पे बात आ रही है। शैतान ने सारे मजाहब को एक बनाने के कोशिश में आज लोगों को फितना इनकारे हदीस का मुर्तकिब कर दिया। और जो अगली आयतें आ रही है ये इस जिमन में बेहतरीन आयात है कि कैसे लोग हदीस के ही मुनकिर होते हैं और क्यों होते हैं नबी के, क्योंकि रसूल सारे मजाहब को एक बनने नहीं देते। बात वाजे? आप कहते हैं अल्लाह को खुश करो, वो कहते हैं भगवान को खुश करो, मिसाल है। हम कहते हैं अल्लाह कैसे खुश होता है, आओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह कैसे खुश हुआ, ठीक है। वो कहते हैं भगवान कैसे खुश होता है, नाचो कूदो उछलो उसके आगे, आके रंग डालो उसके गले में, मुंह फूलों की माला डाल दो। गड़बड़ हो गई ना, किस तरीके से रब को खुश करें? इसके लिए आपको रसूल की जरूरत होती है। जो लोग अपनी ख्वाहिश का दीन पसंद करते हैं ना, वो कहते हैं रसूलों को निकालो। हदीसें इतने हजार साल बाद लिखी गई, छोड़ दो ना, नाउज़ुबिल्ला, फुला फुला फुला, और नतीजा क्या होता है? फिर वो कहते हैं अच्छा बहस ना करो, अच्छा लड़ाइयाँ ना करो। ये रसूल की ज़ात ही बीच में मसला बनी हुई है ना, जो हमें अपनी पसंद का तसव्वुर देती है, इसको निकाल के साइड पे कर दो। अब रह गई बात कुल हुव अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह कौन है, कैसा है, वो पीतल का है, वो पत्थर की बुद्धि में, वो ईसा की सूरत में स्टैचू है, जिसका जो दिल करता है पूजो। कहते हैं ना जो मर्जी पूजो, मंदिर मस्जिद, शेर भी है ना बड़ी ठेठ सी उर्दू के, मंदिर मस्जिद, और एक और कहते हैं कि सब चीजें वो एक ही है। नहीं, एक है अल्लाह सुब्हान तआला। हम सबको बताते हैं कि ऐसी चीजों के ऊपर बातें करने वालों को बताओ, आयत 150, इन अल्लज़ीना यकफुरून बिल्लाह, बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह का, व रसूली ही और उसके रसूलों का, व युरीदून अन युफर्रिकू बैन अल्लाह व रसूली ही, और चाहते क्या हैं कि तफरीक कर दें अल्लाह और उसके रसूलों के माबैन। ये है इस आयत का पिन पॉइंट। अल्लाह और रसूलों के बीच में फर्क से क्या मुराद है? नऊज़ु बिल्लाह के रसूल को भी अल्लाह ही कह दो तो फिर फर्क मिटेगा, जैसे कुछ लोगों ने किया, एक तरफ या अल्लाह लिख दिया, दूसरी तरफ या मोहम्मद लिख दिया, बराबर पे, एक तरफ खाना काबा की तस्वीर और एक तरफ मस्जिद नबी की तस्वीर। मुझे आज भी अपने घर में माजी में बहुत बचपन की एक जायनमाज याद है, पहले होती थी अभी भी होती होंगी, स्किन से कलर का ब्राउनिश जायनमाज पूरा, और बीच में लंबे में से ऊपर का जो हिस्सा ना उसमें हाफ, तो आधे हिस्से में जो गुंबद सा बना हुआ है उसके अंदर काबा और आधे में मस्जिद नबी है। अब मैं सोचती हूँ कि जब हम उस पर नमाज पढ़ते हैं तो मस्जिद नबी और उसके अंदर रोजे की पूरी वो ऐसे अल्लाह के नबी की कब्र बनी हुई है, कभी सोचा भी नहीं कि सजदा किसको कर रहे हैं, काबा की तरफ कर रहे हैं कि मस्जिद नबी की तरफ कर रहे हैं, या मस्जिद नबी में नबी को कर रहे हैं। तो ये सोच कि अल्लाह और रसूल एक ही है, जो रब चाहे और अल्लाह चाहे, जो आप चाहें और अल्लाह और उसका रसूल चाहे, नहीं। युफर्रिकु बैन अल्लाह व रसूलिही का मतलब क्या है कि हम अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन उसके रसूलों को नहीं मानते। जितने मजाहिब आपने तो पढ़े नहीं है ना, हदीस में आता है कि यहूद के 71 71 सेक्ट्स बने थे अपने दौर में, फिरके नसारा के 72 72 और मुसलमानों तुम्हारे 73 बनेंगे 73। जिंदगी रही तो आपको कभी पढ़ाऊंगी जो डिविएटेड फिरके गुजर चुके हैं, मोतजिला, ख्वारिज, राफजी, शियान। यकीन करें जब मैंने फर्स्ट टाइम वो पढ़ा तो मुझे लगे कि मैं आज के दौर के लोग पढ़ रही हूँ, हालांकि आज उन फिरकों का नाम भी नहीं है। आपको कोई मोतजली फिरका आज नहीं दिखेगा, अल्लाह बातिल को मिटा के रख देता है। लेकिन उन सारे फिरकों में जो खराबियां थी वो यही थी। और चले दूर की बात तो ना करिए, करीब की तो कर सकते हैं ना। दीने इलाही, किसको पता है दीने इलाही क्या था? जी, बादशाह अकबर ने बनाया, किताबों में पढ़ते हैं। क्या था दीन? यही दीन था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो दीन आया था वो 1,000 साल के लिए आया था। उस अकीदे में उन्होंने क्या चीज़ शामिल कर ली कि हर रसूल जो आता है वो मैक्सिमम 1,000 साल के लिए आता है, और जिस दौर में बादशाह अकबर था वो 1,000 था। अब जैसे 14th सेंचुरी चल रही है, उस वक्त ये थी। अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि अब वो दीन मोहम्मदी ख़त्म, सस्पेंडेड, और अब एक नया दीन जिसको दीन अकबरी या दीन इलाही। दीन इलाही क्यों कहता था भला? खुद को इलाह कहता था, बादशाह अकबर का अपना लकब इलाह था। शराब हलाल, जिना हलाल, सूद हलाल, बादशाह को सजदे का हक। पढ़ा कभी आपने ये सब? पूरा इसका मैंने हैंड आउट इन आयतों में पढ़ के सुनाया था पिछले साल गालिबन। इंशाल्लाह आपको सूरत मायदा में पिछले साल वाले के साथ रिकैप्स के साथ करवाऊंगी। यकीन करें हमारे बचपन से मैट्रिक तक तो कम अज़ कम हिस्ट्री पढ़ते ही है ना, मुगलिया दौर के बादशाह अकबर। नाम लेने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका तो नाम आ जाता है ना हमारे जहन में, तो वो हीरो हैं। उन्होंने ये बनाया, मकबरा बनाया, लाल किला बनाया, लाहौर में इतनी तारीखी मस्जिदें बनाई। अंदर खाते किसके क्या कायते नहीं पता। तो उस नज़रिया जो दीन इलाही का नज़रिया था उसके अंदर भी यही सोच थी कि नबी को निकाल दो और नए नबी को। या जो इस्माइली फ़िरका है और आज के दौर में जो कादियानी फ़िरका है वो यही सोच है। नबी से झगड़ा है, सब मजाहब का झगड़ा नबी से है। नसारा आज क्यों इस्लाम पे नहीं आते? क्रिश्चियंस अल्लाह को मानते हैं, सारी 80% शरीयत मुसलमानों की मानते हैं। मसला क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानना। यहूद क्यों नहीं मानते? क्या मसला था मदीना में? यारिफूना हु कमा यारिफूना अबना हु, अपने बेटों की तरह अल्लाह के नबी को पहचानते थे, लेकिन मसला यही था। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जिन्होंने अल्लाह को अलग, रसूल को अलग, एक को माना दूसरे को ना माना, ऐसे लोगों का हाल क्या है कि वो दीन से निकल गए। देखिए आप यहाँ छोटी सी बात समझ लीजिए, दीन की निस्बत जब आप रसूल के साथ करते हैं ना, मसलन आप देखिए कि जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो दीन था, आप उसको कहते हैं कि ये दीन ईसवी है, ठीक है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दीन दीन ईसवी हो गया, हजरत मूसा की तरफ जाते हैं दीन मूसवी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आ जाते हैं तो ये दीन मोहम्मदी हो जाता है। इन सारे नामों को अगर आप जमा कर लेते हैं कि मोहम्मद सल्लम, हजरत ईसा, हजरत मूसा, ये तीन है ना। अब ये तीनों का पीछे मेन सोर्स क्या था? अल्लाह की जात। जो पैगाम मूसा का और ईसा का था, क्या वही मोहम्मद का था कि नहीं था? तो ये तो है कंटिन्यूएशन। इसलिए इस्लाम हमें क्या सिखाता है, सूरह बकरा में भी पढ़ चुके हैं, ये गालिबन तीसरा मुकाम है जहाँ ये जिक्र आ रहा है कि ला नुफर्रिकु बैन अहद मिनहुम, हम मुसलमान रसूलों में तफरीक नहीं करते। तफरीक से मुराद क्या है? कि एक को माने एक को ना माने। यहूद सिर्फ हजरत मूसा को मानते हैं, नसारा हजरत ईसा को भी मानते हैं, मूसा को भी मानते हैं, मोहम्मद सल्लम को नहीं मानते। हम मुसलमान क्या कहते हैं? सबको मानना है। यही यहाँ बताया जा रहा है कि जब दीन की निस्बत रसूल के साथ हो जाती है तो फिर दीन रसूल के साथ मंसूब हो जाता है कि ये दीन मूसा, ये दीन ईसा, ये दीन मोहम्मद है। और अगर रसूलों के बीच में ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर्स निकाल दिए जाएं तो मजाहब के अख्तलाफात ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम मेन सोर्स पे रहोगे तो तुम्हें सब कुछ सही मिलेगी। फ़र्क करते कैसे? अब इसका इजहार अगले हिस्से में देखिए। वह यकुलूना, और वो कहते हैं, कौन ये फ़र्क करने वाले? नो मिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद, हम कुछ को तो मानेंगे और कुछ को नहीं मानेंगे। यानी अल्लाह को मानेंगे, रसूलों को मानना ज़रूरी नहीं, या अल्लाह की किताब को तो मानेंगे लेकिन रसूल की सुन्नत को नहीं मानेंगे, ऐसा क्यों करते हैं? व युरीदू नईयत तखिजु बई नजाली का सबीला, वो चाहते हैं कि इसके दरमियान में यानी इसके बैन बैन एक रास्ता निकाल लें, यानी अल्लाह को एक तरफ कर दें, रसूल को दूसरी तरफ कर दें। क्या ऐसे लोगों का अंजाम है? आयत 151, उलाइक हुमुल काफिरून हक्का। देखिए इतनी शद्दोमत से काफिर लफ्ज कभी नहीं आता जितना इधर आ रहा है, बार बार कुफर का लफ्ज, कि ये पक्के काफिर हैं। वातत नलिल काफिरीन अजाब मुहीना, ऐसे काफिरों के लिए हमने रुस्वा को नजाब तैयार कर रखा है। इसके बरक्स आयत 152, वल्लजीना आमनु बिल्लाहि व रसूलिही, और जो लोग ईमान लाते हैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, वलम युफर्रिकु बैन अहदिम मिन्हुम, और नहीं फर्क करते इनमें से किसी के बीच में, यानी एक को माने दूसरे को ना माने या दोनों में ना करें, ओलाई कसौ फयूती मुजूरहुम, यही लोग हैं जिनको अनकरीब देगा उनके बदले, वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह इनके अजर देगा और अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला मेहरबान है। क्या पता चला कि अकीदा क्या है? कि जो बात अल्लाह ने कही जो रसूल ने कही। देखिए अगर आप रसूल की बात को निकाल दें, आज जो ये मसले उठते हैं वजह उसकी, आपको किसी से बात करनी पड़े, पहली तो बात है दुआ करें कि अल्लाह दिल खोल दे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ताला ही दिल खोलता है सिरात मुस्तकीम पे, वो ही लेके आता है। दूसरी बात आप ये समझ लीजिएगा कि अगर हम रसूल को साइड पे कर दें, नमाज पढ़ सकते हैं? पहले तो बताइए किस अल्लाह को मानेंगे? कुल हो अल्लाह वाहद, अल्लाह एक है, कौन सा एक है? क्या मैंने और आपने अल्लाह को देखा या अल्लाह के बारे में जाना? पूरे कुरान में तो अल्लाह ताला के सिर्फ अस्मौल हुस्ना है, इससे ज्यादा अल्लाह ताला के अफाल का भी बहुत कम जिक्र है। चलिए बहुत कुछ भी जिक्र हो गया, आगे चले, नमाज पढ़ते हैं हम? कितनी पढ़ते हैं? 5। आप मेरे पे अगर ट्रस्ट करें तो मैं आपको बता दूं कि आपका तो आज छठा पारा शुरू हुआ है ना, अल्लाह के हुक्म से पूरा कुरान कई कई बार पढ़ा हुआ और पढ़ाया हुआ है। पूरे कुरान में एक मुकाम पर भी ये नहीं है कि 5 नमाजें पढ़ो। तो बताइए आप हदीस का इनकार करते हैं, हदीस नबी को नहीं मानते, तो 5 नमाजें किसकी सुन्नत पे पढ़ रहे हैं? किसने आपको बताया? चलिए 5 नमाजों के औकात वक्त किधर है? कुरान में है, इशारे मिलते हैं आपको, खुद बताऊंगी, पीछे भी एक गुजर गया सूरह तौहा में, बड़े क्लियर इशारे हैं, वो भी अजम्पशन, वो तफसीर की बुनियाद पे जो अल्लाह के नबी ने उन आयतों की। ये जो कुरान में और आप पढ़ रहे हैं ना, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, आपको पता है कि इस कुरान की आयतों की तफसीर भी हदीसों में है। सही बुखारी में बाबु तफसीर है पूरा। कुरान पाक की जब कोई आयत नाजिल होती थी, कुछ तमाम फहम थी ना, लेकिन कुछ खास आयतें थी जैसे अल्लाह नूरु समावात, अब उस पर क्या सोचे, तो सहाबा अल्लाह के नबी से आके पूछते थे, तो अल्लाह के नबी ने जो उसका मफहूम बताया इमाम बुखारी ने, वो सब जमा करके पेश कर दिया। आप तो इस कुरान की तफसीर भी नहीं समझ सकते अगर हदीस ना हो। फिर नमाज के अंदर 2 सजदे, 1 रुकू है कि नहीं? कहाँ लिखा है कुरान में? अभी तक आया 5 पारों में, आगे भी नहीं आएगा 25 पारों में। आप बेसिक चीजें नमाज की ही नहीं कर सकते, आगे चले जाइए 2-4 बातें और ले लीजिए। शादी करते हैं ना सब, शादी के बाद ही घर बनता है ना, और हमें पता है कि शादी में निकाह है, कि निकाह करो वली इमाम ये सारे, कहाँ लिखा है कुरान में? मिलता है आपको कहीं निकाह के बोल कहीं मिले? आपको भी पीछे सूरत निसा के आगाज में पढ़ाया तो हर आयत के साथ आपको उसकी तफसीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिखाई ना, कि आपने इस आयत का ये कहा। विरासत का कानून आप पढ़ चुके, 1 रुकू और कुछ आयतें, क्या सिर्फ उसको पढ़ के बगैर हदीसों को साथ जोड़े आप विरासत की बात कर सकते थे? और भी आगे चलते जाइए, तलाक, तलाक का तरीका आपने कुरान में पढ़ लिया। अगर सिर्फ ये तरीका बाय तरीका आपको मुझे बता दिया जाता तो क्या हम किसी को सही तरीके से तलाक दे दिला सकते थे? शादी, निकाह, तलाक, बच्चों की तरबियत, हुकूमत, आप हदीस को अलग कर दें तो आपके दीन की इमारत यूं ढह जाती है। जैसे पीछे भी मिसाल दी थी कि ये एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसमें बहुत कुछ लगा हुआ है, लेकिन जो अंदर का ढांचा है ना, लोहे के गार्डर या लकड़ियाँ, उन्होंने इसको एक शक्ल दी हुई है। आप अंदर से वो लोहे का सांचा निकाल दें तो ये मलबा है। सुन्नत और सीरत और हदीस ये ढांचा है दीन का, उसके ऊपर दीन खड़ा है। जो हदीस नहीं मानते डिमोलिश दीन है उनका, अपनी मर्जी का दीन है, फिर मजा ही आता है, जिधर दिल चाहते मोड़ लो। रसूल ने ये कहा था, नहीं नहीं रसूल को छोड़ो, बस आज के दौर में ये कर लो तो ये हो जाएगा, वो कर लो तो वो हो जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन तरीके से अपने अकीदे की हिफाजत करने वाला बना दे, अपने बच्चों की जड़ों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत और रसूल की मोहब्बत डाल दे। तरीका इसका यही है, सीरत की गलियों से उनको घुमाएं, ऐसी किताबें पढ़ाएं और इनको इस तरह से जोड़ दें कि जब तक वो अपने आप को इन चीज़ों में न ले आए, अल्लाह ताला की नज़रों में वो कभी भी सुरखरू नहीं हो सकते। कभी भी ये मत कहिए कि ऐसे लोग जो हैं जो कुछ भी कर लें, चलो ठीक है चैरिटीज तो बहुत करते हैं, सदका तो बहुत करते हैं, वो जाने उनका रब जाने, लेकिन हम बहरहाल अकीदे को बात करके इस चीज़ पे मुतमईन है कि हम हदीस के बगैर दीन ले ही नहीं सकते। इस मौजू पे पूरी पूरी बुक्स हैं, पूरे पूरे सेमिनार्स हैं, जिसको इस पे मजीद मालूमात चाहिए उसको ले, लेकिन हम सब अपने दिल को क्लियर कर लें कि अल्लाह के नबी की हदीस। अब चले लोग कहते नहीं रसूल को तो सभी मानते हैं, हदीस को नहीं मानते, ये तो बिल्कुल ऐसे है कि हम अल्लाह को मानते हैं कुरान को नहीं मानते, क्योंकि जैसे अल्लाह का कलाम कुरान में है। अच्छा मज़े की बात ये भी देखें, अब इंशाल्लाह आपकी किताबो तहारा के बाद इत्तबाए सुन्नत ही शुरू हो रही है, उम्मीद है कि उसके दौरान आपका बहुत शरह सदर होगा, आप उसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई क्वेश्चन होंगे तो इस बारे में इंशाल्लाह मज़ीद करेंगे।